दिन भर तारीख 15 फरवरी दिन बुधवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। शशिकला ने बंगलुरु की अदालत में किया समर्पण, भेजी गई जेल। उत्तर प्रदेश विधानसभा के दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक हुआ 65% मतदान।
हमें अच्छा विधायक चाहिए, अच्छी सरकार यूपी में आनी चाहिए, जो विकास करे, जो सुरक्षा करे जनता की, जो अच्छा काम करे, इसी देखते हुए हमने वोट डाला।
उत्तराखंड में पड़े 68% वोट। दुनिया जहान में सुनिए दशकों पुराने इसराइल फलस्तीन विवाद में नई हलचल की कहानी।
इसराइल जो चाहता है करता है, यहाँ तक कि और इतना कि ओबामा के सर के ऊपर सेल करके जाके उन्होंने कांग्रेस को एड्रेस कर दिया। ये ज्यूइश लॉबी की पावर है अमेरिका के अंदर।
पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी AIADM के महासचिव शशिकला ने आज बेंगलुरु की अदालत में समर्पण कर दिया है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक बेंगलुरु सेंट्रल जेल के बाहर आज हंगामा हुआ है, जिसमें शशिकला के काफिले की 4 गाड़ियों को नुकसान हुआ है। आज सुबह चेन्नई से बेंगलुरु के लिए रवाना होने से पहले शशिकला तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व पार्टी प्रमुख जयललिता की समाधि पर गईं। कल सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में शशिकला को सुनाई गई निचली अदालत की 4 साल की सजा को बहाल रखा था। बेंगलुरु में शशिकला उसी जेल में सजा काटेंगी जहां वो 2014 में जयललिता के साथ बंदी रखी गई थी। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 69 सीटों पर आज मतदान हो गया है। शाम 5 बजे तक उत्तराखंड में 68% मतदान हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों के लिए वोट डाले गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में 65.5% वोटिंग हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित कर इतिहास रच दिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 9:28 पर PSLV-C37 से ये सभी उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए गए और 505 किलोमीटर ऊपर सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित कर दिए गए। इसमें इसरो के 2 नैनो उपग्रह और अन्य देशों के 101 नैनो उपग्रह शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों की प्रशंसा की है। इसरो के अध्यक्ष एस किरण कुमार ने इस उपलब्धि के बारे में ये कहा।
PSLV-C37 has put in the Cartosat 2 series satellite and all the remaining 103 satellites.
एस किरण कुमार कह रहे थे कि PSLV-C37 से ये सभी उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिए गए हैं। इनमें इसरो के 2 नैनो उपग्रह और अन्य देशों के 101 नैनो उपग्रह हैं। ये थे इसरो के अध्यक्ष एस किरण कुमार। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद और बहुचर्चित नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एक हफ्ते के भीतर शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेज दिया जाए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो। बिहार के सिवान से सांसद रह चुके मोहम्मद शहाबुद्दीन इस समय सिवान की जेल में है। पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के उस दावे को बकवास बताया है, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप के चुनाव प्रचार की टीम के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही रूसी अधिकारियों के संपर्क में थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की तरफ इशारा करते हुए आरोप लगाया कि खुफिया एजेंसियां गैरकानूनी तौर पर मीडिया में जानकारियां लीक कर रही हैं। अमरीका में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति ट्रंप पर रूस के साथ संबंधों को लेकर सफाई देने का दबाव बढ़ गया है। रूस ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से इनकार किया है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोफ ने ये कहा। सुबह के अखबारों को मत पढ़िए, ये मेरे शब्द नहीं हैं। आजकल सही और फर्जी खबरों में अंतर करना मुश्किल हो गया है। ये अखबार की रिपोर्ट है जो तथ्यों पर आधारित नहीं है, जो किसी भी सही तथ्य की तरफ संकेत नहीं करती है। दिमित्री पेस्कोव के शब्द, बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के भाई किम जोंग नैम की मौत के सिलसिले में मलेशिया की में एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि महिला को राजधानी कुआलालंपुर के हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है, जहां किम जोंग नैम पर संभवतः जहरीली सुइयों से हमला किया गया था।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर आपका में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की अंतरिम महासचिव शशिकला ने आज बड़े नाटकीय अंदाज में बंगलुरु की अदालत में समर्पण कर दिया। यहां उन्हें जेल भेज दिया गया। आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल पुराने इस मामले में उन्हें और उनके 2 निकट संबंधियों को सजा सुनाई थी। शशिकला ने समर्पण के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा था और सुबह ही उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। सड़क मार्ग से बंगलुरु रवाना होने से पहले शशिकला जयललिता की समाधि पर श्रद्धांजलि देने पहुंची। इस बीच शशिकला के हस्ताक्षर से ऑल इंडिया अन्ना डीएमके मुख्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि उनके भतीजे और पूर्व सांसद दिनाकरण को पार्टी का उप महासचिव बना दिया गया है। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की बंगलुरु में अपने सहयोगी इमरान कुरैशी से और पूछा कि शशिकला ने किस तरह से अदालत में समर्पण किया।
जी, वो अभी थोड़ी देर पहले बैंगलोर पहुंचे और उसके बाद उनको कोर्ट ले जाया गया और जहां जेल के पास कोर्ट हॉल है वहीं जज वहां आ गए, क्योंकि पुलिस की गुजारिश थी कि वो बैंगलोर की सिटी में आके फिर वापस जेल जाना बहुत मुश्किल होगा ट्रैफिक और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए, तो इसलिए उनको जेल में ही जज वहां पहुंच गए थे और वहीं उनका सरेंडर हुआ और उसके बाद अभी उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो गया है और उनको जेल में उनको एक कक्ष में रखेंगे इलावर्सी के साथ, वो भी इस मामले में दोषी नंबर 3 है।
इमरान, जिस तरह का ड्रामा देखने को मिला चेन्नई से जब शशिकला निकली, थोड़ा बताइए हमारे श्रोताओं को।
ये ड्रामा तो पहले सुबह से ही शुरू हो गया, सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू हुआ। जब उनकी मांग थी कि सरेंडर करने के लिए और कोई कुछ वक्त चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कहना था कि और कोई वक्त नहीं दिया जा सकता, उनको फौरन जाके बेंगलुरु के जो ट्रायल कोर्ट है वहां उनको सरेंडर करने के लिए कह दिया गया। तो उसके बाद उन्होंने चेन्नई से रोड 2-3 गाड़ियों में यहां पहुंचे हैं, शाम में पहुंचे और वहां निकलने से पहले वो जयललिता के मेमोरियल पे गए जहां उनको दफना गया था मरीना बीच में, और वहाँ एक तरीके से एक रस्म किया उन्होंने, मगर वहाँ का एक तरीके का एक ड्रामा हुआ। और उसके बाद फिर वहां से निकल के वो MGR के मेमोरियल पे भी गए और जिसके साथ जिनको शायद जानती भी नहीं थी उस वक्त, जयललिता को तो के साथ तो खैर 30-35 साल के साथ रह चुकी हैं, मगर MGR के जमाने में वो वीडियो पार्लर चला रही थी, तो खैर उनके मेमोरियल पे भी गई और वहां से फिर बैंगलोर रवाना हुई।
बंगलुरु से ये थे हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी जो बता रहे थे कि किस तरह से शशिकला ने समर्पण किया। दूसरी ओर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान और सस्पेंस अभी भी जारी है। राज्यपाल विद्यासागर राव किसे सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं, पार्टी से बर्खास्त नेता पनीर सेल्वम को या फिर विधायक दल के नेता ई पलानी सामी को, चेन्नई में क्या चल रहा है? सीधे कार्यक्रम में हम आपको चेन्नई ले चलते हैं। वहां के स्थानीय पत्रकार KV लक्ष्मणा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। लक्ष्मणा साहब, सबसे पहले तो यही बताइए कि इस समय चल क्या रहा है, राज्यपाल कर क्या रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए कौन आसरा देख रहा है?
देखिए, अभी राज्यपाल दोनों ही जो कंटेंडर हैं, ई पलनी स्वामी जो जिनके साथ नंबर्स हैं, उनके साथ 125 विधायक हैं और जो अभी मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं चीफ मिनिस्टर जो हैं ओ पनीरसेल्वम साहब, अभी पहले उन्होंने दोबारा बुलाया दोनों को, अभी बातचीत चल ही रही है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि गवर्नर साहब अपने आप पूरा संतुष्ट हो जाना चाहते हैं कि नंबर किनके पास हैं, अगर कोई डिस्प्यूट है, अगर वो डिस्प्यूट है तो किस तरीके से उसको रिजॉल्व किया जाए, तो वो अपने डिसीशन के ऊपर कोई आंच नहीं आना देना चाहते हैं। इसी वजह से वो एकदम एक एक चीज का छानबीन करके तब
आगे बढ़ना चाहते हैं।
जी जी जी।
और शायद यही वजह रही होगी कि उन्होंने शशिकला को ये निमंत्रण आमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि शायद उन्हें अंदाजा था क्योंकि और कि अदालत फैसला सुना सकती है, इसलिए वो वेट एंड वॉच की स्थिति में थे शायद इसीलिए।
जी 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 जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये तो एक डेट का तो एक अनुमान था, लेकिन अंदर क्या ऑर्डर आने वाला है इसका तो किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन उनका शायद ये वेट एंड वॉच जिसको AIDMK और शशिकला ने खूब लताड़ा था, और ये भी नहीं देखा कि गरिमा की पद की गरिमा को नहीं देखा, कुछ नहीं।
हाँ।
उन्होंने लगे हाथ आड़े हाथों लिया गवर्नर साहब को, जो बाद में जो जिस तरीके के तथ्य सामने आए, जिस तरीके का ऑर्डर सामने आया, उनसे उनका जो डिसीजन था वो एकदम जस्टिफाई होता है।
यहाँ पर लक्ष्मण एक बात बताइए कि ये जो विधायक रिजॉर्ट में बंद किए गए थे वो अब कहाँ हैं? और
देखिए वो अभी तक रिजॉर्ट में ही बने हुए हैं और काफी इस तरीके के एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, चार्जेस, और आज तो एक पुलिस की FIR भी दर्ज की गई है OP पन्नीरसेल्वम साहब के यहाँ से, एक उनके विधायक हैं जो वहां से भाग के आ गए बताते हैं।
हाँ।
तो उन्होंने एक कंप्लेंट भी फॉर्मल दर्ज किया, तो पुलिस गई थी, जैसे काफी दिनों से लगी हुई है, एकदम वहां पे रैपिड एक्शन फोर्स भी है।
हाँ।
और करीब 2000-3000 के आसपास तो वहां पे पुलिस ही पुलिस है, और वो जो रिजॉर्ट है एकदम लग्जरी रिजॉर्ट है जहाँ पे आपका हर तरीके सुविधा
उपलब्ध
है, सुख सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि कहते हैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है
जी,
मतलब
जी,
जो जी,
जी
तो वहां पे ये अभी भी आज भी।
हाँ।
जब पत्रकारों से कुछ चंद नुमाइंदे उनसे आए थे।
हाँ, हाँ।
बात करने के लिए वो यही बता रहे थे कि हम अपने ही इच्छा से यहाँ पे हैं,
यानी कि वो अपनी ही इच्छा से वो कह रहे हैं कि हम अपनी ही इच्छा से यहाँ पर रुके हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया KV लक्ष्मणा साहब चेन्नई से सीधे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो तमिलनाडु का सस्पेंस तो अभी भी बरकरार है। हम अब आपको उत्तर प्रदेश ले चल रहे हैं, जहां पर चुनाव के दूसरे चरण की 67 सीटों पर आज मतदान हुआ। मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा और इसी चरण में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान समेत कई अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के भाग्य का फैसला होना है। चुनाव आयुक्त विजय देव ने बताया कि 65% वोट पड़े,
बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन वोटर्स की देखने को मिली और 5 बजे तक ऑलरेडी 65.5% हमारी वोटिंग हो चुकी थी एंड स्टिल काउंटिंग।
65% वोट पड़े, ये थे चुनाव आयुक्त विजय देव जो की जानकारी दे रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से वोट पड़े और जानकारी के साथ है लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
दूसरे चरण में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 67 सीटों पर मतदान हुआ, इनमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 12 सीटें भी शामिल हैं। इस चरण में 721 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान यूं तो सभी जगह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कुछ जगहों से हिंसक झड़पों की भी खबरें मिली हैं। बदायूं के एक बूथ पर दो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के कारण पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखी गईं, जिससे ये आभास हो गया था कि मतदान का प्रतिशत ज्यादा रहेगा। युवा मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। ज्यादातर मतदाताओं का कहना था कि उन्होंने विकास को मुद्दा बनाकर मतदान किया है।
यहाँ पर केवल वो लोग जो आ रहे हैं वो विकास के लिए वोट डालने के लिए आ रहे हैं, अच्छा विधायक चुनने के लिए वो आ रहे हैं, अच्छी सरकार चुनने के लिए आ रहे हैं, और सब लोगों की प्राथमिकता है शांति सुकून व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए।
हमें अच्छा विधायक चाहिए, अच्छी सरकार यूपी में आनी चाहिए, जो विकास करे, जो सुरक्षा करे जनता की, जो अच्छा काम करे, इसी की देखते हुए हमने वोट डाला।
मैं वोटर्स से सभी से ये अपील करना चाहूंगी कि जब आप वोट करने जाएं तो एक मुद्दा दिमाग में रखें कि पिछले 5 साल में आपका जो MLA उसने क्या विकास किया, या हो सकता है उसको इतनी सुविधाएं ना मिली, आगे वो क्या कर सकता है।
सबसे पहले देश की सुविधा है, उसके बाद पढ़ाई तो नौकरी तो आम चीज है, हर कोई देता है, ऐसा कोई नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि देश की सुविधा के लिए जो नेता बने वो अच्छे ही बने।
मतों के ध्रुवीकरण की भी चर्चा लगातार होती रही, लेकिन न सिर्फ मतदाताओं ने बातचीत में किसी तरह के ध्रुवीकरण की बात स्वीकार की, बल्कि नेताओं ने भी इस पर आपत्ति जताई है। रामपुर में वोट डालने पहुंचे बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा,
मेरी समझ में नहीं आता ये जो लोग कहते हैं कि साहब ये मुसलमान वोट बढ़ जाए, हिंदू वोट बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, वो बढ़ जाए। हम कहते हैं कि बटना नहीं चाहिए, जुटना चाहिए, और जुड़ करके जो है वो समाज के सभी वर्गों का, हमने सभी लोगों से हमारी अपील है कि सभी वर्ग जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, एक चीज। दूसरी चीज ये जो हराने के लिए वोट देना है वो क्रम खत्म होना चाहिए, हम जिताने के लिए वोट करें।
दूसरे चरण में जिन प्रमुख नेताओं के भाग्य का फैसला होना है उनमें सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के अलावा बीजेपी के विधायक दल के नेता सुरेंद्र खन्ना, कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद और सपा सरकार में मंत्री कमाल अख्तर भी शामिल हैं। इसके अलावा मेनका गांधी, संतोष गंगवार जैसे केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, क्योंकि ये खुद भले ही चुनाव न लड़ रहे हों लेकिन अपने इलाके के उम्मीदवारों को चुनाव जिताने का राजनीतिक दबाव इन पर जरूर होगा। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
इधर उत्तराखंड में शाम 5 बजे तक 68% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मुख्य मुकाबला, जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। हालांकि दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिनमें दोनों दलों के बागी नेता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं और अंतिम परिणामों में चौंका सकते हैं। लेकिन दलों और नेताओं की हार जीत के बीच इस चुनाव से यह भी तय होगा कि उत्तराखंड के पर्वतीय स्वरूप और उसकी पहचान की कितनी परवाह मतदाताओं और राजनीतिक दलों को है। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
राज्य विधानसभा के पिछले 3 चुनावों के बाद उत्तराखंड में आज पहला मौका था जब मतदान के दिन मौसम आमतौर पर खुला हुआ और खुशगवार था। सुबह 8 बजे से ही पोलिंग बूथों पर लोगों का जुटना शुरू हो गया और देखते ही देखते कतारें बनने और लंबी होने लगीं। सुबह बुजुर्गों की संख्या ज्यादा थी, दिन होते होते युवा और अधेड़ महिलाएं और पुरुष भी वोट की कतार में शामिल हो गए। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में वोट प्रतिशत पिछले चुनावों के मुकाबले ज्यादा देखा गया।
कुछ नहीं, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए, हम तो बुजुर्ग हैं, हमें अभी तक पेंशन नहीं है, हमारी 60 साल की उम्र हो गई, हमें अभी तक कोई पेंशन नहीं है। कोई आता है लिख के पर्चा भर के ले आता है, हमें पता भी नहीं चलता क्या पढ़े लिखे हैं, हमें नहीं जाते, बस ये है बच्चों के लिए सोचता है आदमी।
उत्तराखंड का मतदाता बहुत जागरूक है, चीज़ों को समझता है। ये स्थिति नहीं है कि कोई भी राजनेता आके उनको बरगला ले या बहका ले, वो वाली स्थिति नहीं रहेगी।
ईमानदार होना चाहिए और उसमें थोड़ा सा ज्ञान भी हो, स्वार्थ न हो और सबको एक दृष्टि से देखे। ऐसा नहीं है कि कहीं अपने आदमी के लिए अच्छा कर दे और दूसरों के लिए वैसे ही कर दे। तो हम ऐसा विधायक चाहते हैं, अगर ऐसा कास्ट मिल जाए इस देश में तो बहुत बढ़िया है।
इस बार कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को पूरे 5 साल देने की गुजारिश वोटरों से की, तो बीजेपी ने केंद्र सरकार के कामकाज और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही अब तक मुकाबला माना जाता रहा है, लेकिन इस बार निर्दलीय भी बड़ी संख्या में जीत कर आ सकते हैं। इससे सरकार के निर्माण और सत्ता के समीकरण और उलझ भी सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत।
ये अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई चेहरा होता तो फिर क्यों प्रधानमंत्री जी को बार बार इनको कहना, प्रधानमंत्री जी को हल करना पड़ता? यहाँ तो मुकाबला हरीश रावत वर्सेस नरेंद्र मोदी हो गया है, ये हो गया।
उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में बीएसपी अपनी स्थिति सुधारने की उम्मीद लगाए बैठी है, तो क्षेत्रीय दल यूकेडी को अपने वजूद की चिंता सता रही है। चुनिंदा सीटों पर वामपंथी दल कितने वोट ला पाते हैं, इससे उनकी आगे की राजनीतिक जमीन तय होगी। कुर्सी की खींचतान और देहरादून केंद्रित राजनीति के बीच चुनावी मुद्दे भी जमीन से जुड़े होने चाहिए थे, लेकिन इन चुनावों में ऐसा नहीं हो पाया। पत्रकार और एक्टिविस्ट प्रवीण भट्ट।
इससे नहीं चलेगा कि गांव में मोबाइल पहुंच गया लेकिन सिंचाई की सुविधा नहीं है, इससे भी नहीं चलेगा कि सिंचाई की सुविधा है लेकिन खेतों में जो है जानवर जाके फसल को चौपट कर रहे हैं। तो सब इन मुद्दों को देखा जाना चाहिए और विकास की परिभाषा को थोड़ा बदलना चाहिए, समग्र रूप से विकास की बात की जानी चाहिए।
69 सीटों के लिए वोट डाले गए, बाकी बची 1 सीट चमोली जिले के कर्णप्रयाग की है, जिस पर 9 मार्च को वोट पड़ेंगे। 11 मार्च को नतीजे घोषित होंगे। शिव जोशी, बीबीसी देहरादून।
ये तो हुई चुनावों की बात। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के बहुचर्चित मीना खलको हत्याकांड में सीआईडी ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जुलाई 2011 में पुलिस ने मीना खलको को माओवादियों के साथ कथित मुठभेड़ में मारने का दावा किया था, लेकिन बाद में पुलिस का ये दावा झूठा साबित हुआ। इसके बाद सरकार ने 17 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
जुलाई 2011 में सरगुजा जिले के लोंगराटोला गांव में 16 साल की आदिवासी लड़की मीना खलको की पुलिस ने उस समय हत्या कर दी थी जब वो अपने खेत में बकरी चरा रही थी। पुलिस ने मीना को माओवादी बताया था, लेकिन 4 साल तक चली न्यायिक जांच के बाद सरकार ने माना कि मीना को पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मारा है। इस मामले में 25 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया था, 17 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया था, लेकिन बाद में सभी आरोपी पुलिसकर्मी नौकरी में बहाल कर दिए गए थे। न्यायिक जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार ने सीआईडी जांच करवाई और अब कहीं जाकर इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर के विज ने बताया,
जो इंस्पेक्टर था ये तीन नाम उसके अंदर सामने आए थे, ठीक है, हुआ इन्वॉल्व इन फायरिंग में सीनियर मोस्ट इंस्पेक्टर जो था वो अरेस्ट हो गए, बाकी भी देख रहे थे। FIR नाम जो नहीं था उसमें, नाम इन्वेस्टिगेशन में आई थिंक SHO लिखा था एंड अदर्स, तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन में नाम क्लियर किए हैं।
लेकिन मीना खलको हत्याकांड की जांच और कार्रवाई के लिए आंदोलन करने वाले छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला का कहना है कि सरकार इस मामले को शुरू से दबाने की कोशिश करती रही है।
न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से पुलिस वालों को इस मामले में दोषी करार दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार कहीं ना कहीं इनको बचाने की कोशिश करती रही है। वर्तमान में एक पुलिस वाले की गिरफ्तारी हुई है, ये स्वागत योग्य है, लेकिन शीघ्र ही सरकार जो है अन्य जो भी इस मामले में दोषी हैं पुलिस वाले उनको शीघ्र ही गिरफ्तारी करें।
मीनाखल को मामले में सीआईडी की ताजा कार्रवाई के बाद उम्मीद की जा रही है कि दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और अगर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को आधार मानकर सभी 25 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो छत्तीसगढ़ में पुलिस के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
और अब इसराइल फलस्तीन समस्या पर आज सुनिए निखिल जहां का दुनिया जहां। दुनिया जहां।
यूरोप में होलोकास्ट के खत्म होने के बाद 1967 में जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहूदियों ने इसराइल का रुख किया तो इसराइली बस्तियों ने आकार लेना शुरू किया
उस जमीन पर जो फलस्तीन की थी। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों से चले आ रहे विवाद में एक बड़ी भूमिका इन्हीं बस्तियों की है जो लगातार बढ़ती जा रही हैं।
मध्य पूर्व के जानकार सईद नकवी।
ये एरियल शरोन के जमाने से शुरू हुआ जो वो वहाँ के नेता हुए और तब से ये चीजें बढ़ने लगी बहुत ज्यादा। सेटलमेंट्स कितने बने एरियल शरोन के बाद अब जो तो मुझे नहीं याद, लेकिन वो बनते चले जा रहे हैं और कोई बहुत ज्यादा प्रेशर इसराइल पे डालने वाला नहीं है। इसराइल जो चाहता है करता है, यहाँ तक कि और इतना कि ओबामा के सर के ऊपर सेल करके जाके उन्होंने कांग्रेस को एड्रेस कर दिया। ये ज्यूइश लॉबी की पावर है अमेरिका के अंदर। भाई ओबामा मना करते रहे, उसके बावजूद नेतन्याहू साहब वहां गए और जाके उन्होंने जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस को एड्रेस किया।
इसराइली बस्तियों पर निगाह रखने वाली एजेंसी पीस नाउ के मुताबिक पश्चिमी तट पर कुल 131 बस्तियों में करीब 3,80,000 से ज्यादा यहूदी रहते हैं। इनमें से 97 बस्तियां ऐसी हैं जिन्हें बिना आधिकारिक मंजूरी के बनाया गया। पश्चिमी तट पूर्वी यरूशलम और गोलन पहाड़ियों पर बनाई गई इन बस्तियों ने शांति की कोशिशों को कभी परवान चढ़ने नहीं दिया। यरूशलम में भारतीय पत्रकार हरिंदर मिश्रा।
पश्चिम तट जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से इसराइल के नियंत्रण में है, एक हिस्सा जो है वो फिलिस्तीनी प्रशासन के पूरी तरह से नियंत्रण में है और बीच का कुछ हिस्सा है जिसमें दोनों का ही नियंत्रण है और दोनों ही मिलकर के वहां का सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। तो जो इसराइल के नियंत्रण का जो इलाका है वहीं पर ये सारी बस्तियां बनी है और दरअसल ये विवादास्पद ही इसको हिस्सा माना जाता है।
इसराइल ने ये बस्तियां अपनी सीमा से लगते मिस्र, जॉर्डन और सीरिया की जमीन पर भी बसाई थी, लेकिन बाद के वर्षों में इन्हें हटा लिया गया। 1993 में जब दोनों देशों के नेताओं ने शांति की दिशा में बड़े कदम उठाए और एक दूसरे की सरकारों से सफल बातचीत की तो ये उम्मीद बंद ही थी। इसराइल ने फिलिस्तीनी सरकार को मान्यता दी। ओस्लो में हुए शांति समझौते में ये भी तय हुआ कि इन बस्तियों का मुद्दा तब तक नहीं उठेगा जब तक कि अंतिम समझौता नहीं हो जाता। नेताओं को इन कोशिशों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार तो मिल गया, लेकिन शांति को इस इलाके का पता नहीं मिल सका। अलबत्ता इस इलाके में बस्तियों का दायरा और जरूर बढ़ गया।
1993 में जो समझौता हुआ उसमें ये तय किया गया था कि धीरे धीरे जो है इसका हल निकाला जाएगा। ये जो इलाके हैं जब फिलिस्तीनी राष्ट्र का निर्माण होगा तो फिर को लेकर के कोई समाधान निकाला जाएगा, लेकिन हुआ यह है कि शांति वार्ता पे जैसे जैसे ठहराव देखने को मिला उसकी वजह से ये जो इलाके हैं इनमें लगातार एक ग्रोथ होता गया और इसराइल का ये मानना है कि ये ग्रोथ जो है वो नेचुरल ग्रोथ है, आबादी बढ़ी है, इस वजह से बस्तियों का निर्माण करना पड़ा।
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ही दुनिया भर में जो आशंकाओं की आंधी उठी है उसे इसराइल फिलिस्तीन की जमीन भी अछूती नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो चुनाव अभियान के दौरान ही इसराइली दूतावास को तेल अबीब से यरूशलम ले जाने की बात कह दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने राजदूत भी ऐसे शख्स को नियुक्त किया है जो बस्तियों के बारे में इसराइल की नीति के समर्थक हैं। शायद यही वजह है कि ट्रंप के सत्ता में आते ही इसराइल ने ढेर सारी बस्तियों को बनाने के लिए आधिकारिक मंजूरी दे दी। हालांकि जानकार मानते हैं कि जितनी बातें अमरीकी राष्ट्रपति ने कही हैं उन्हें पूरा करना उनके लिए आसान नहीं होगा। सईद नकवी,
ट्रंप बहुत सी बातें कह रहे हैं और बात में समझ में ये आता है कि वो बगैर समझे बूझे, बगैर गौर और फिक्र किए, बगैर बहुत सी बातें कह देते हैं। मसलन उन्होंने कह दिया कि हम अपना एम्बेसी जरूसलम में खोलेंगे। अब इस जरूसलम में खोलेंगे तब इसका मतलब ये हुआ कि सब मामला सेटल हो गया। भाई इंडिया की बड़ी दोस्ती है, हमारे डिफेंस एरिया में बहुत सेंसिटिव असलहे इसराइल से आते हैं, हमारे बहुत करीबी दोस्त नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान ने अभी एम्बेसी जो है वो तेल अवीव में ही रखी है और अमेरिकन एम्बेसी भी वही है, लेकिन जरूसलम चले जाने तो एक अजीब और गरीब सिग्नल होगा, इसीलिए वो होगा नहीं अभी।
इसराइल बीते कई दशकों से अमेरिका की नीतियों पर असर डालने वाले प्रमुख तत्व के रूप में सामने आता रहा है और मौजूदा प्रशासन भी इससे अलग नहीं है। अमेरिका एक तरफ इस्लामिक स्टेट और दूसरे इस्लामी चरमपंथियों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश में है, दूसरी तरफ उसे ईरान और उत्तर कोरिया को भी काबू में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में मची उथल पुथल भी इसराइल को हाथ पैर मारने के लिए ज्यादा मौके दे रही है।
देखिए, किसी हद तक ये मान के हम चलें कि बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड और एमेच्योर एस्टेब्लिशमेंट पावर में आया है वॉशिंगटन व्हाइट हाउस में, और अभी उसकी दिशाएं, उसकी लाइन, उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी वो सिवाय ट्वीट्स के और एक कुछ बिल्कुल अब्रीविएटेड एक्सप्रेशंस के कोई क्लियर कट बात सामने नहीं आई है। अभी तो कंफ्यूजन है वहां, और इतना बड़ा कंफ्यूजन दुनिया की सबसे बड़ी पावर में पैदा हो जाए उसमें तमाम छोटे छोटे लोग जो हैं वो अपनी 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 चौधराई बनाने लगते हैं। इस वक्त वो जो चाहे करे, जो चाहे, आपका खिरद का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, जब तक कि हमें ये ना पता चल जाए कि ट्रंप साहब की कल ये ऊंट किस कल बैठने वाला है। पहले हम ये तो देखें कि अमरीका की विदेश नीति है क्या।
इसराइल में बीते कुछ सालों से दक्षिणपंथी पार्टियों का बोलबाला है, दूसरी तरफ फिलिस्तीन में भी उग्रपंथी गुट हमास मजबूत होने के साथ ही अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। संसदीय चुनाव में भी हमास ने अपनी बढ़त बना ली है और अब याहिया सिनवार के रूप में उसके पास ऐसा नेता है जो अपनी आक्रामक नीतियों के लिए जाने जाते हैं। शांति और समझौतों की बात करने वाली PLA यानी फिलिस्तीन लिबरेशन अथॉरिटी थोड़ी नेपथ्य में चली गई है, तो ऐसे में ये कैसे मुमकिन है कि शांति के बारे में चर्चा हो? हरिंदर मिश्रा,
गजा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसराइल के नियंत्रण में था, जो कि इसराइल ने उसको खाली कर दिया, और वो भी तब जबकि यहाँ पर दक्षिणपंथी सरकार थी। आरियल शरोन जो है वो की बड़े ही हॉकिश प्रधानमंत्री माने जाते थे, उनके नेतृत्व में उसे खाली कर दिया गया। तो ऐसा पहले हो चुका है, लेकिन फर्क ये है कि वहां पर आबादी बहुत कम थी। गजा का जो जिस हिस्से, जिन बस्तियों की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर तकरीबन 10,000 लोग ही रह रहे थे, जबकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तकरीबन 5,00,000 लोग जो हैं वो इन बस्तियों में रह रहे हैं, और ऐसे में अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें उनको वहां से निकाल पाना आसान नहीं होगा।
अरब इसराइल के विवाद की चर्चा करते करते पत्रकारों की कई पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन इसका समाधान तो दूर, इसमें रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। नेता बदल जाते हैं, संगठन बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, यहाँ तक कि नीतियां भी पलट जाती हैं, लेकिन नहीं बदलती है तो यहाँ की स्थिति जो हर गुजरते दिन के साथ और जटिल होती जा रही है। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
BBC समाचार। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी AIADMK की अंतरिम महासचिव शशिकला ने आज बेंगलुरु की अदालत में समर्पण कर दिया। उत्तर प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में से 69 सीटों पर आज 68% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों के लिए 65% मतदान हुआ। BBC समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। सुबह नमस्कार भारत लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।